वकालू, और उन्होंने कहा कूनू हूदन ओ नसारा। उन्होंने कहा, उन्होंने ये यानी एक तरह से ये उनका दावा है, दावा आप भी दावा करते हैं ना, जैसे गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, तो वो भी अपने दावा का काम करते हैं कि चलो हो जाओ तुम यहूदी या नसरानी तहतदू, तुम हिदायत पा जाओगे, निजात पा जाओगे। बस यानी ये नहीं कि वो दोनों का कहते थे कि तुम यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ तो दोनों में से कुछ भी हो जाओगे तो तुम हिदायत या तो, ये नहीं है मतलब यहां पे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके कालत यहूदू, जो यहूदी कहते हैं लई सतिन नसारा लाशी, नसारा तो किसी चीज पे नहीं, ये तो हक पे ही नहीं, और नसारा क्या कहते हैं यहूदी हक पे नहीं, तो ये थोड़ी कहेंगे कि आप तुम यहूदी कहेगा तो कोई बात नहीं तुम ईसाई भी हो जाओ तो ठीक हो, नहीं, यहूदी कह रहा है कि तुम यहूदी होगे तो तुम हिदायत पे हो, और नसरानी कहता है तुम नसरानी बनोगे तो हिदायत पे हो, ये मतलब है यहाँ पे। हर एक अपने आप को ही ठीक समझ रहा है, तुम तब हिदायत पा सकते हो, हिदायत का यानी ताल्लुक वो क्या समझते हैं किसी खास नाम में है, बस तुम बन जाओ ईसाई, बस तुम बन जाओ नसरानी, बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे हम कहते हैं बस तुम इस फिरके में आ जाओगे, तुम फलाने इमाम को मानोगे तो फिर तुम सही हो, अगर तुमने ये हमारे वाले इमाम को नहीं माना तो फिर तुम बस हिदायत ही नहीं। तो उन्होंने भी नामों को ही समझ लिया कि बस ये नाम रख लिए और ये नाम के इसके साथ हो गए, इसके साथ निस्बत हो गई तो राहे हिदायत बस हमने पा ली, चाहे अकीदा कुछ भी है। और हालांकि कुल कह दीजिए बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि इब्राहिम अलैह सलाम का दीन वो यानी वो है जो हिदायत याफ्ता है, हनीफा जो यकसू थे वो है असल दीन, वो है असल रास्ता, वो है जो अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है। तुम समझते हो यहूदी ईसाई होने से नहीं, इवन मुस्लिम नाम रखने ना भी हिदायत याफ्ता होने की अलामत नहीं है, ये नहीं कि हम कहते हैं कि बस मुस्लिम नाम तुम्हारा हो जाए चाहे नाम के ही मुसलमान बन जाओ बस ठीक है, नहीं, असल हिदायत याफ्ता होना क्या है सबके लिए है, चाहे वो पुराने बनी इसराइल में से थे चाहे आज का कोई बंदा है, जो मिल्लत इब्राहिम पे, और इब्राहिम अलैह सलाम तो यकसू थे, यकसू वो होता है यानी हमारे लिए यहाँ पे भी पता चल गया ना रोल मॉडल इब्राहिम अलैह सलाम है कि वो सबसे कट के एक अल्लाह के हो जाने वाले थे, कैसे ये होता है, अल्लाह ताला हमें प्रैक्टिस कराता है ना 5 दफा दिन में यकसू होने की, ये प्रैक्टिस ही तो है कि सारी दुनिया से कट जाओ, ना किसी से बात उस वक्त कर सकते हैं आप, ना किसी की तरफ देख सकते हैं, ना किसी को कोई इशारा कर सकते हैं, आप सबसे मुंह मोड़ के सिर्फ एक अल्लाह ताला की तरफ अपना ध्यान लगा के मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, ये सारी एक प्रैक्टिस है, यही सारी जिंदगी में ऐसे ही रहना है कि हर फैसला अल्लाह ताला से लेना, हर बात अल्लाह ताला से पूछनी, किसी और की तरफ तवज्जो नहीं करनी, जब इंसान अल्लाह के फैसले को छोड़ के दूसरों से पूछने लगे कि तुम बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओ मैं कैसे चलूं, या अपनी ख्वाहिशात को आगे बना ले, तो वो यकसू नहीं है, जो किसी को भी अल्लाह की मर्जी उसके हुक्म उसकी बात के मुकाबले में ले आता है तो समझ लें कि वो बंदा यकसू नहीं, ये जो हम कहते हैं ना समझ ही नहीं आती किसकी मानूं किसकी ना मानूं, अभी आपको यही नहीं समझ आ रही कि किसकी माननी और किसकी नहीं, फिर तो यकसू ही है ही नहीं है, अगर आप आज तक कंफ्यूज्ड हैं एक अल्लाह की माननी है बस, और अल्लाह ताला की बात कहाँ से पता चलेगी, कुरान से हदीस से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके बता दिया अल्लाह ताला की बात के ऊपर, उनकी सुन्नतों से सहाबा के तरीके से, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कॉपी किया, तो यकसुई का तरीका ये है कि दुनिया चाहे जो भी कह रही हो, दुनिया चाहे जिस तरफ मर्जी चल रही हो, आप एक अल्लाह की बात को नहीं छोड़ें। देख लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी कौम एक तरफ थी, उन्होंने ना मान के दी उनकी बात। जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब हम खुद साबित करते हैं कि हम यकसू हैं या नहीं, हम भी हनीफ हैं या नहीं। तो उस वक्त जो हनीफ बन के रहे, जो अल्लाह का बन जाए उस वक्त, किसी को छोड़ना पड़े, किसी की बात को निगेट करना पड़े, रिजेक्ट करना पड़े, किसी से ताल्लुक तोड़ना पड़े, सब गवारा है, मगर अल्लाह ताला की बात को छोड़ना गवारा नहीं। ये है यकसुई। इसके लिए बड़ा कुछ को काटना पड़ता है, इसीलिए है ना, कट के एक तरफ यकसू हो जाना, बड़े कुछ को छोड़ना पड़ता है, बड़ी नाराजगियां लेनी पड़ती हैं, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, बड़े लोगों की नजरों से दूर होना पड़ता है, कईयों की नजरों से गिरना भी पड़ता है। लेकिन अगर यकसू बनना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, तो फिर परवाह नहीं करनी किसी की भी। और हनीफ में इस्तकामत का माना भी है कि उनमें इस्तकामत थी, जम जाना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर। ये नहीं कि आज कुछ सुन लिया तो बड़े जोश में आ गए, अब तो मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, 2 दिन बाद कच्चा रंग था ना, उतर गया, फिर उसके बाद फिर उसी के ऊपर चल पड़े। कई लोगों की जिंदगी में ऐसे अप एंड डाउन आते हैं, ये कुछ दिन कुछ हो जाते हैं, फिर आपको कुछ अरसे बाद उनको दिखेंगे कुछ और ही बने हुए होंगे, फिर कुछ और अरसे बाद देखेंगे किसी और ही तरफ चल रहे होंगे। हनीफ नहीं है वो, हनीफ वो है कि बस इस्तकामत, इस्तकामत जरूरी है। सिर्फ अल्लाह का हो जाना, सब किसी की परवाह नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह का हो जाना। इस रास्ते में कोई रुकावट भी आए उसको कुछ नहीं समझना और चलते ही जाना, ये है हनीफ होना। अल्लाह ताला ने दिखा दिया ना, दुनिया में इंसान देखे कितनी औरत की बड़ी कमजोरी होती है कि वो चाहती है उसका शौहर सिर्फ उसका ही बन के रहे, किसी और की तरफ ना तवज्जो, जिसकी तरफ शौहर की तवज्जो हो जाए वो उसी से जलने भुनने शुरू जाती है। वो चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसके बहन भाई हो, चाहे कोई भी हो, कहती बस तवज्जो मेरी तरफ रहे। हालांकि क्या है, ये एक रिश्ता है बस, और बहुत बाद में जाके बनता है, फिर भी वो यकसुई चाहती है, ऐसा ही है ना। लेकिन अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक कब से है, दुनिया में नहीं आए थे तब से, और हमेशा का है, फिर भी हम उसके लिए यकसू नहीं होते। हम अपने लिए तो गवारा नहीं करते कि मेरा शौहर किसी और की तरफ देख भी ले आंख उठा के, लेकिन खुद कभी इसके गुलाम, कभी उसके गुलाम, कभी उसके गुलाम, यकसू ही नहीं है, हर एक के आगे बिछते फिरते हैं, कर अल्लाह ताला के आगे नहीं बिछते। दिल करता है तो मानते हैं, दिल करता तो मानते ही नहीं, ये थोड़ी यकसुई होती है। अपने लिए क्या ये गवारा करते हैं और अल्लाह ताला के लिए यही कर रहे हैं? बहुत सारे लोग इस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और फिर हम तो पहले ही तैयार होते हैं, किसी दिन एक तरफ चल पड़ते हैं, किसी दिन दूसरी तरफ, और फिर किसी दिन दिल करता है तो फिर अल्लाह की तरफ भी आ जाते हैं। ये भी यकसुई नहीं है, फोकस्ड होना। अल्लाह हु अकबर। और जब अपने फैसले अल्लाह ताला की हुक्मों को छोड़ के कहीं और से लेना शुरू कर दें, तुम बताओ मैं क्या पहनूं, तुम बताओ मैं कैसे शादी करूं, फलां बताए मैं यहाँ नौकरी करूं या नहीं, जब लोगों से आपने फैसले पूछ पूछ के चलना है, अल्लाह ताला की बात को पीछे रख देना, तो फिर क्या यकसुई है? और कहीं अपनी ख्वाहिशात कोई खुदा बनाया हुआ, तो यकसू अल्लाह के लिए तो ना हुए फिर। हाँ, अल्लाह की किताब के मुकाबले में आज के ट्रेंड्स को फॉलो करना है। मैं अल्लाह की किताब कुछ भी कहती हो, मुझे नहीं इसकी परवाह। ये फिर यकसुई के खिलाफ है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही नहीं चुने गए, वो यकसू थे। अल्लाह अकबर, सारों से मुकाबला कर लिया उन्होंने, किस किस को नहीं छोड़ दिया, इवन अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। कि जब बेटे को लेकर जा रहे हैं जिबा करने के लिए, कितनी मोहब्बत होगी ऐसे बेटे से। सोचें आप, खुद अपने बच्चे को सामने रख के सोचें कि इंसान को कितनी मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। और किसी का इकलौता ही बेटा हो, वो बड़ी, जिसको कहते हैं मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ हो, बड़ी दुआओं के बाद, कैसा दिल उसकी तरफ खींचता है। उसको तो कांटा भी चुभे तो इंसान को तकलीफ होती, इंसान कहता अपने ऊपर ले लूंगा, इसके ऊपर ना कोई आंच भी आए, और उसको कुर्बान करने जा रहे हैं। कुछ जोक है ये? कोई छोटी बात है? लेकिन जो यकसू है ना, फिर वो मिसाल देखें फिर। और अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड नहीं किया बेटों को कुर्बान करने का, अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड नहीं किया अपने घर वालों को कहीं बियाबान में छोड़ आए, अपनी औलाद को कहीं छोड़ आए और फिर आके खुद अकेले बैठ जाए। अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड नहीं किया कि अपने मुल्क को छोड़ो, अपने घर बार को छोड़ो, अपने खानदान को छोड़ दो, कुछ भी ऐसा डिमांड नहीं किया हमसे। तो डिमांड्स ही बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत थोड़ी, फिर भी हम उसमें यकसू नहीं हो पाते, फिर भी एक अल्लाह के हो नहीं पाते। तो हमसे तो थोड़ा सा तकाजा किया गया, थोड़ा सा मांगा गया, हम उतना भी नहीं दे सके। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो तो मुशरिकों में से नहीं थे, यानी ये यहूदियों ने भी ईसाइयों ने भी शिर्क अपने अंदर शामिल कर लिया। ईसाइयों ने तो बहुत ही बड़ा किया, यहूदियों में भी एक सेक्ट था जिसने शिर्क किया, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ऐसे नहीं थे। तो तुम उनके साथ क्या नस्बतें जोड़ते रहते हो, वो तो हनीफ थे। तुमने सिर्फ नाम ही अपने रख के समझ लिया कि बस यहूदी हो गए या ईसाइयों ने नाम रख दिया। आज भी ईसाई अपना इतना दावा का काम करती हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब के लोग दुनिया में प्रीच कर रहे हैं अपने मजहब को, तो वो ईसाई हैं। किस किस जगह नहीं ये पहुंचे, अफ्रीका में और इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी, रिमोट एरियाज में, गांवों वगैरह में, कहाँ कहाँ नहीं गए। खर्चा भी करते हैं इसके ऊपर, पैसा भी बहुत लगाते हैं, नाइस भी इतने हैं, गिविंग भी इतने हैं, खिदमत खल्क भी बहुत करते हैं, उसके जरिए अपनी तरफ बुलाते हैं। हालांकि उनके दीन में कोई सॉलिड चीज है ही नहीं, तब भी उनकी किताब प्रिजर्व नहीं है, तब भी एक बाइबल उठाओ कुछ लिखा हुआ, दूसरे में कुछ और लिखा, तीसरे में कुछ और लिखा, कंट्रडिक्शन है, इतनी बदल दी गई भी है। अब भी वो देखें कैसे दिलजमी से काम कर रहे हैं। और देखें ये भी बात सुन ले कि इंसान सोचता है वो अच्छा, वो कह रहे हैं हमें तो समझ नहीं आती, वो भी कह रहे हैं वो ठीक है, वो भी कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं भाई, किसी के कहने पे ना जाएं कि कोई कह रहा है कि मैं ठीक हूं तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, कोई कह रहा है कि हम ही हिदायत याफ्ता हैं तो हम उससे मुतासिर हो जाएं और हम भी सोच में पड़ जाएं, पता नहीं शायद ठीक ही कहता हो, आखिर इतना पढ़ा लिखा है ये, कोई पागल थोड़ी है, आखिर ये इतने सारे हैं दुनिया के अंदर, ये तो मुसलमानों से भी ज्यादा है, ठीक ही कहते होंगे, इतने लोग आखिर कोई बेवकूफ तो नहीं ना होंगे, ये कोई क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया नहीं है किसी को जानने का कि भाई वो हक पे है या नहीं, बल्कि देखो तो मिल्लत इब्राहिम को देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, वो है जो हक है। तो लोगों के कहने से ना आप समझ लिया करें, आजकल हर कोई कह रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ यहूदी और नसरानी की बात है ना, अब तो इतना कुछ दुनिया के अंदर है, इतने सारे फिरके और मजाहिब, और हर कोई कह रहा है जी हम ही ठीक है, बस हमारी तरफ आ जाए। अब लोग कहते हैं हम कंफ्यूज हो, इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपके पास इल्म नहीं होता। जब आप सॉलिड इल्म हासिल करोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आप फिर हक पे जम जाओगे। कूलू, तुम सब कह दो। कौन सब? जितने भी ईमान वाले हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, तुम सब कहो आमन्ना बिल्ला। ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेयर कर दो, ये जुबान से बोलो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर। ढका छुपा नहीं, अच्छा हम तो छुपा ही लें कि हम किसके ऊपर ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उन्जिला इलैना, और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ। और जैसे हमने इस पारे के शुरू में देखा कि मुत्तकीन की जो खसूसियात हैं उनके अंदर भी है ना, कि हम उस पे भी ईमान लाए जो हमारे पर नाजिल हुआ और जो हमसे पहले नाजिल हुआ, वही यहाँ पे वमा उन्जिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात। असबात से मतलब क्या है? औलादे याकूब, जो उनकी आगे बच्चे थे। तो क्या क्या नाजिल हुआ? तौरात, इंजील और सुहुफ, जो सुहफ इब्राहिम, उन सारों पर हम ईमान लाते हैं। और हमें नहीं पता जो भी इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर जो उतरा, याकूब अलैहिस्सलाम पे क्या चीजें उतरी, आज दुनिया में प्रिजर्व नहीं है। सुहुफ इब्राहिमी का भी कोई पता नहीं है। तो हम उन सब पर ईमान लेकर आते। अब ये हैं चीजें जिस जिससे आप कॉमन ग्राउंड्स ढूंढते हैं। ये कॉमन ग्राउंड नहीं होती कि किसी को कह दें हम भी जी आपके मजहब को मानते हैं क्योंकि आप भी हक पे हैं, ये नहीं होती कॉमन ग्राउंड। ये कहें कि हम ईमान रखते हैं, हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम उस सब पर ईमान ना ले आए जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ। तो हम उस पर भी ईमान रखते हैं, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पे जो नाजिल हुआ, वमा ऊतिया नबीयूना मिन रब्बिहिम, और जो दिए गए अंबिया, जो अपने रब की तरफ से जो भी उनके ऊपर आया, तो सब चीजें कवर हो गई। यानी जितने नबी पिछले गुजरे हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से जो नाजिल हुआ, खास तौर पे यहाँ पे मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का इसलिए जिक्र है कि उनके पास बाकायदा किताबें नाजिल हुई अल्लाह ताला की तरफ से। बाकी तो सुहूफ थे, लेकिन ये हैं जिनके ऊपर तौरात और इंजील जो सबसे ज्यादा, यानी ऐसी बुक्स हैं जो जिनको ये मानते हैं और जिनकी बारे में बात हो रही है, यहूद और नसारा, उनकी यहाँ पे खास तौर पर जिक्र किया गया। और इनकी औलाद में ही बाकी अंबिया भी आए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इसलिए उनमें प्रोमिनेंट मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मतें थीं ये प्रोमिनेंट हैं, यहूदी और नसरानी, और दुनिया में आज तक चले आ रहे हैं। तो इनका जिक्र खास तौर पे अलग से किया गया, अदरवाइज तो वो शामिल ही हो गए ना उसमें, जो भी दूसरे नबी थे वो कह ही दिया गया था, तो ये भी उन नबियों में शामिल हो गए, लेकिन अलग से भी इनका जिक्र आया। तो जो कुछ भी नाजिल हुआ इनकी तरफ, अब कोई कहे अगर आपको उठा के कि आप तो इसके ऊपर ईमान रखते हैं, तो अब आप पढ़ना शुरू कर दें तौरात, उसकी भी क्लासेस लेना शुरू कर दें। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, जो अल्लाह ताला ने दिया, हम उस पर ईमान रखते हैं। ये नहीं अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, क्योंकि इसके अंदर तुमने खुद अपनी बातें शामिल की हुई हैं। इतनी चेंज आ गई है, इतनी कि ये तो मैं आपको खबरों की बात पिछले रिसेंटली पहले भी बताई थी ये बात, कि किसी ने कहा कि मैं अपनी कोई पुरानी और कितनी पुरानी नानी दादी की तहखाने में, हमारे बेसमेंट में उनका बाइबल पड़ा हुआ था। तो मैंने उनका वो वाला पुराना बाइबल उठा के जब मैंने उसको पढ़ा, तो वो तो इतना डिफरेंट था आज के बाइबल से। तो इनके तो खुद ही के नहीं है मैच करते। और कितनी चीजें यहूदियों ने इंजील के अंदर शामिल करा दी। तो कुरान तो आप 1400 साल पहले का उठा के देख लें या आज का, या बीच में जिस जमाने में भी आप जहां से भी ले आए, किसी मुल्क का भी ले आए, किसी जगह से भी ले आए, सेम है। तो हम तो उस पे ईमान आते हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, ना कि जो तुमने बना लिया। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिनहुम, हम फर्क नहीं करते नबियों में किसी में भी। फर्क करना यहां पे मतलब क्या है कि किसी को मानना और किसी को ना मानना। यहां पे फजीलत की बात नहीं हो रही, फर्क की बात हो रही। फजीलत तो अल्लाह ताला ने बाज को बाज पे दी है। जो तीसरा पारा शुरू होगा तो उसमें आप देखेंगे फद्दलना बादहुम अला बाद तिलकर रसूल जो है, तो अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, मगर हमारा काम नहीं है ये हम कहें कि फलां पैगंबर दूसरे से बढ़ के था। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुझे यूनुस बिन मत्ता से ऊपर ना करो। ये मतलब आपको पता चल गया कि उनसे एक गलती हुई थी, तो अब आप कहें कि वो तो कुछ नहीं थे और हमारे नबी ऐसे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूसुफ अलैहि सलाम को जब कैद खाने में कहा गया था, मतलब निकलने की चॉइस दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं पहले उसकी तहकीक कराई जाए जो मेरे ऊपर केस है। तो फरमाया अगर मैं इतने साल कैद खाने में रह के मुझसे कहा जाता तो मैं फौरन निकल आता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हम्बल थे, गो के आप वाकई इमामुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया से ऊपर आपका मकाम है, लेकिन हमारा काम नहीं कि हम किसी नबी को नीचे करें और किसी को कहें ऐसे कि वो नहीं थे और ऐसे नहीं थे। हम ये जो बात है ना, ला नुफरिकु बैना अहदिन मिनहुम, ये हमारी डिस्टिंक्शन है, ये हमारे हमारा इम्तियाज है सिर्फ उम्मते मुस्लिमा का कि वो ये कहते हैं, बाकी कोई भी चाहे यहूदी उठा लें, ईसाई उठा लें, या जितने कोई भी मानने वाले, कोई भी ये नहीं कहता ला नुफरिकु बैना अहदिन मिनहुम। यहूदी देख लें वो ना ईसा अलैहिस्सलाम को मानते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईसाई देख लें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, लेकिन मुसलमान सबको मानते हैं। आप देख लें एक रसूल को मानना को ना मानना, सबको ना मानना है। ये नहीं आप कह सकते कि हमने एक का ही तो इनकार किया है ना, बाकियों को तो हम मानते हैं। और हम सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ऐसी है कि जो तमाम रसूलों को उसी तरह मानते हैं जैसे कि अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया है, यानी ना तो उनके मकाम से उनको घटाते हैं ना उनके मकाम से उनको बढ़ाते हैं। अनलेस के हमारे अंदर भी आज ऐसे कुछ लोग आ गए हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह ताला के बराबर करके रख दिया, तो उनको तो निकाल ही देना। लेकिन जो मुस्लिम हैं वो उम्मत मुस्लिमा का ये सिर्फ इम्तियाज है, बाकियों की तरह नहीं है। बाकियों ने क्या किया, ईसाइयों ने इतनी एग्जेजरेशन की कि ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह खुदा का बेटा ही बना के रख दिया। और इनके अंदर ये भी है यहूदो नसारा में दोनों में कि ये ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते उन नबियों को भी नहीं देते जिनको ये मानते हैं। इन्हें आप देख लें लूत अलैहिस्सलाम के बारे में एक अस्तग़फिरुल्लाह एक किताब थी जो जिसमें बताया गया था कि हम क्या मानते हैं और ये क्या मानते हैं। आप पढ़ भी नहीं सकते जितनी इन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह उनकी शान में गुस्ताखियां की हुई हैं, इंसान से पढ़ी भी नहीं जाती इतने डिग्रेडिंग अंदाज में, इतनी उनकी कैरेक्टर को मसख कर दिया गया है कि आप दुनिया में कोई शरीफ इंसान होगा उससे भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बंदा भी ऐसा करे। कहाँ एक नबी ये काम करे। इतनी गंदी और घटिया बातें ये पैगंबरों के साथ मंसूब करते हैं, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। और हम हर पैगंबर को उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। इन्होंने तो कार्टून बनाए पैगंबरों के, नबी अलैहिस्सलाम अस्तग़फिरुल्लाह उनके लिए भी इस तरह की हरकतें इन्होंने की, और फिर कहते हैं हम तो अपने भी पैगंबर का बना लेते हैं तो क्या हो गया। हम कहते हैं हम किसी के साथ भी नहीं ऐसा करते, हम किसी पैगंबर को भी, और हम ये नहीं कहते कि तुमने अब हमारे पैगंबर के साथ ऐसा किया तो अब हम तुम्हारे के साथ करेंगे, हम ये भी नहीं कहते, क्योंकि हमारे लिए वो भी उतने ही काबिले एहतराम है। तो बेशक अल्लाह ताला ने फजीलत दी है बाज को बाज पर, अगर हम एहतराम सबका करते हैं और उसी तरह करते हैं जैसे हम अपने नबी का एहतराम करते हैं, और नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उनके लिए फरमा हम लहू लिए अल्लाह के इस्लाम लाने वाले हैं, यानी फरमा बरदार हैं। जो भी अल्लाह का हुक्म है हम उसकी फरमा बरदारी करते हैं। ये आयत जो है इसी से बिल्कुल मिलती जुलती सूरह आले इमरान में भी है, सिर्फ वो कुल के साथ स्टार्ट होती है और बीच में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन बाकी सारी की सारी ऐसे ही है। इस आयत के अंदर ईमान है। ईमान किन चीजों का कि से मिलके बनता है? ईमान तस्दीक बिल कल्ब, यानी दिल में भी मानना। ईमान सेकंड नंबर पे, प्लस क्या है? इकरार बिल लिसान, जुबान से भी इकरार करना। और नंबर थ्री तस्दीक बिल जवारे, या तस्दीक बिल अमल कह लें आप, जो भी आपको आसान लगे। जवारे का मतलब होता है अपने लिम्स के साथ, और तस्दीक बिल अमल अमल के साथ अपने उसको अप्रूव कराया। अमल बिल जवारे, सॉरी तस्दीक बिल जवारे नहीं, अमल बिल जवारे। तो तस्दीक बिल लिसान, तस्दीक बिल कल्ब, और इकरार बिल लिसान, और अमल बिल जवारे, ये तीन चीजें होती हैं तो ईमान बनता है। ईमान सिर्फ दिल में मान लेने का नाम नहीं है, जुबान से इकरार भी करना जरूरी है और अमल भी करना जरूरी है। और इस आयत में तीनों चीजें, कैसे? कूलू भी, कह भी दिया आपने, तो जाहिर है जुबान से आपने इकरार कर लिया। और आमन्ना, ईमान कहाँ होता है? सबसे पहले दिल के अंदर। दिल में मानेंगे तो फिर जुबान है ना, तो दिल में हमने मान लिया, आपने ये जुबान से भी कह दिया कि हमारे दिल के अंदर ईमान है, और नहनु लहू मुस्लिमून। मुस्लिम होना, फरमा बरदारी किससे करेंगे? अमल से करेंगे। तो तीनों चीजें इसके अंदर आ गई। दिल का भी ईमान आ गया कि हम दिल से मानते हैं जो भी नाजिल किया। जाहिर है दिल में ही मानना होगा ना, कि जो भी नाजिल किया उसके ऊपर अमल तो करने की वो चीज नहीं है। आपने दिल से मान लिया कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, इसहाक अलैहिस्सलाम पे, याकूब अलैहिस्सलाम पे, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम पे, और बाकी नबियों पे, और हम कई किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, ये दिल का ईमान। और मुस्लिम वो है जो फरमा बरदार है। और यही बात देखिए याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी कही थी, नहनु लहू मुस्लिमून, और हम भी यही बात कहते हैं, और तुम भी यही बात कहो क्योंकि तुम उनके मानने वाले हो। ये है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये है कॉमन ग्राउंड्स। कॉमन ग्राउंड इसमें मत ढूंढा करें कि आप मान जाएं कि वो ठीक है तो ये तो कॉमन ग्राउंड हो जाएगी। देखो हम कितने लोगों को, दूसरों को बर्दाश्त करने वाले, और कितना दूसरों के लिए अच्छे जज्बात रखने वाले, ये बात है जिसको आप बताएं। और ये ही है जो सवाल है कब्र में, कि आपका दीन क्या है, आपका दीन क्या है, ये पूछा जाएगा। अब वो इस्लाम है कि नहीं, वो ही बोल सकेगा। यहाँ पे तो दुनिया में हमने कह दिया नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसके लिए ही सिर्फ फरमा बरदार हैं, ये कहना तो आसान है, मगर क्या हमारा ओढ़ना, बिछोना, सोना, जागना, उठना, बैठना, हमारे मामलात, हमारी कमाइयाँ, हमारी ताल्लुकात, हमारे रहन सहन सारा इस्लाम के मुताबिक है? हमारा लाइफस्टाइल है इस्लाम या नहीं? वो ही फिर कह सकेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। कब्र आसान जगह नहीं है, वहां पे तीन सवालात होने हैं, उनमें एक सवाल है कि तुम्हारा दीन क्या है। तो दीन इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, कोई मामूली बात नहीं है। जो इस्लाम को समझ लेगा, हाँ इस्लाम के मुताबिक चलेंगे लोग हमें फंडो कहेंगे, इस्लाम के मुताबिक चलेंगे लोग हमें बैकवर्ड समझेंगे, हमने तो नहीं चलना, हमारी तो कोई चीज इस्लाम के मुताबिक नजर आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि बन बन के दिखाते हैं कि किसी तरह ऐसे में नजर आऊं कि मेरा इस्लाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस चले तो इस नाम को भी उतार के फेंक दे और कोई और नाम रख ले, और रखते हैं लोग, रखते हैं ताकि पता ही ना चले कि हम मुसलमान हैं, किसी को भी ना जरा सा भी ना। और जाहिर है रहन सहन और हाल हुलिया और हर चीज ही बिल्कुल वैसी कर ली जैसे दूसरे हैं, और इस्लाम को तो बिल्कुल ही छोड़ के रख दिया, और फिर सोचते हैं कि वहां पे निजात हो जाएगी इसके ऊपर। ये कहीं मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, बाप मुसलमान था और माँ मुसलमान थी, इसलिए हम भी मुस्लिम हो गए, और इसके ऊपर हमें उनके पासपोर्ट पे हमें जन्नत में जाने दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना। जबकि अपने पास जब तक ना हो, फ इन आमनु, फिर अब हमारे लिए रोल मॉडल कौन है? फ इन आमनु भी मिथली मा आमन तुम भी फकद इहतदू। वो तो कहते ना यहूदी और नसरानी हो जाओ तो इहतदाऊ होगे, हिदायत याफ्ता होगे। नहीं, यहां पे कहा गया अगर वो ईमान लाए भी मिथली मा आमन तुम भी, जैसे कि तुम ईमान लेकर आए हो, जैसा तुम्हारा ईमान है। किन का, किसको कहा जा रहा है? सबसे अव्वलीन मुखातिब इस कुरान के कौन है? तुम है ये, जो तुम ये ता नहीं है, तुम प्लूरल के लिए है, जैसे तुम सब ईमान लेकर आए। वो कौन है जो सब ईमान लेकर आए थे? सहाबा कराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम है ना। तो जैसे तुम ईमान लेकर आए, उनके ईमान का कैसे हमें पता चलेगा? उनकी जिंदगियों को देख के, वो कैसा ईमान लेकर आए थे, उनकी जिंदगियां क्या थी? आपने कभी पढ़ने की कोशिश की है? हाँ, हमें ये तो पता है कि फलां जो लीडर है उसकी जिंदगी कैसी है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी बीवी कैसी है, उसके घर के कुत्ते का भी पता है हमें, और फिर और भी जिनको हम सेलिब्रिटीज समझते हैं उनका भी पता है। अच्छा जी, वो क्या कर रहे हैं, अब उनको फॉलो करते रहते हैं हम, उनकी बातें पढ़ते रहते हैं, वो आजकल उनका क्या शौक हुआ हुआ है, आजकल वो क्या पहन रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। कभी सहाबा कराम की जिंदगियों को ऐसे फॉलो करके देखा? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उनको क्राइटेरिया बना दिया रहती दुनिया तक के लिए, ना सिर्फ यहूदो नसारा को बल्कि हर एक को बता दिया गया। अगर तुम समझते हो ना कि तुम्हें हिदायत पानी है, तुम्हें हिदायत याफ्ता होना है, तुम गाइडेड होना चाहते हो या नहीं, या मिसगाइडेड रहना चाहते हो? कुछ लोग तो मिसगाइडेड होने पे ही खुश हैं, उनको नहीं परवाह है कोई गार्डन्स की, उनको कोई समझते नहीं कोई हमें ज़रूरत है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको ये हेयर्स है, जिनको ये खौफ है कि अगर हम मिसगाइडेड हुए तो उनका तो अंजाम फिर क्या है कयामत में। तो हमें गाइडेंस चाहिए, गाइडेड होना चाहते हैं, हिदायत याफ्ता होना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, तो फिर किसको देखें, किसका तरीका देखें, किसके पीछे चलें? जाहिर है कोई तो होना चाहिए जिसको फॉलो करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा। इसी से हमें पता चलता है कि जब हम कुरान भी समझते हैं ना, तो अपने मनमाने मानों से ना समझे। ये लोग जो लोग बैठ जाते हैं खुद ही तफसीरें करते रहते हैं, खुद ही मन माने जो दिल करता है माने बना लेते हैं, वो नहीं है कुरान की तफसीर। कुरान की तफसीर वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और जो सहाबा कराम ने उसके ऊपर चल के दिखाया, वो ही है कुरान की तफसीर, वो ही है हिदायत याफ्ता ग्रुप, वो ही है अनमत अलैहिम। अनमत अलैहिम का रास्ता देखना तो सहाबा कराम का रास्ता देख लो, तभी तुम हिदायत पाओगे। शुरू में ही बता दिया गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जब हमने मांगा था ये रास्ता, सीधा रास्ता, तो हमें अनमत अलैहिम का बताया गया। ए अल्लाह, हमें उस काफले में शामिल कर देना जिस पे तूने इनाम किया, तो वो यही तो रास्ता है। अगर इनको छोड़ के हम लोगों की बातों में आ जाए, आज जी वो फलाने बड़ी जबरदस्त बातें करता है, बड़ी जबरदस्त, क्या वो बातें करता है? वो कोई कुरान हदीस या सहाबा के बताई हुई बात से करता है या कुछ और ही कर रहा है? बस किसी को शोला बयान देख ले उसके पीछे चल पड़ते, आंखें खोल के देखते ही नहीं, मनमानी इंटरप्रिटेशंस कोई करते जा रहे हैं। आजकल हमें ज्यादा शौक इस चीज का है कि बस शोला बयान नहीं हो, ऐसे कर रहा और वैसे कर रहा और इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, बस यही है सही। कुछ तहकीक नहीं करेंगे, ये कहाँ से हमें बताता है, ये किस जगह से पढ़ा हुआ है, इसके असातज़ा कराम कौन थे? तो जिसने हिदायत याफ्ता होना है ना, तो बताया गया अगर तुम्हारा ईमान इनके ईमान की तरह का हुआ उनका ईमान कैसा था? अव्वल तो हमें पता ही नहीं उनका ईमान था कैसा, तो फिर कैसे उनके ईमान जैसा ईमान लाएंगे? इनका ईमान तो ऐसा था कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, उनके ईमान नहीं हिलते थे। वो खिजां के पत्तों की तरह नहीं थे कि जो हर वक्त झूलते रहते हो, किसी टाइम पे भी गिर जाएगा। इतना फ्लिमजी ईमान ऐसा नहीं था उनका। फिर कैसा था? हमें सब पता है, सब कुछ नहीं हमें बताने की जरूरत, सब जानते हैं हम। हमारे तो जब ये दावे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे फिर? तो अगर ईमान वैसा है ही नहीं तो अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। सहाबा कराम जैसा ईमान चाहिए, चाहे यहूदी है तुम्हें भी चाहिए, नसरानी हो तुम्हें भी चाहिए। और आज का जो सो कॉल्ड मुसलमान अपने आप को कहता है कि मैं मुस्लिम हूं, तुम्हें भी वैसा ईमान लाना है, और वैसा ईमान लाना है जैसे ये बताया गया यहाँ पे। सब पे ईमान लेकर आए, किसी के दरमियान फर्क नहीं करा। और जैसे सहाबा थे उनके कॉलो फेल में तजाद नहीं था, अब कहें कुछ और करें कुछ, और वो सोचने नहीं बैठ जाते थे, समय ना वाताना करते थे। हमने सुन लिया, हमने मान लिया। हजरत उमर के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैंने दीन में इतनी ज्यादा कोशिश करने वाला और इतना सखी किसी को नहीं देखा। तो कैसे वो लोग थे? उन्होंने तो अपनी जिंदगियां लगा दी इस दीन के पीछे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया। तब तुम हिदायत याफ्ता बनोगे। तो स्टैम्प वो हो, क्राइटेरिया वो हो जो सहाबा कराम थे, तब एक्सेप्टेबल हो तुम अल्लाह ताला को। वह इन तवल्ला, और अगर वो मुंह मोड़ जाए तो इन्नमा हुम फी शिकाक, तो फिर वो तो फट गए ना, फिर उन्होंने कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया। इस रास्ते से हट गए तो फिर मुखालफत पे तुल गए, या कोई और ही अपना रास्ता इख्तियार कर लिया, किसी और ही तरफ चल पड़े, मुंह मोड़ लिया, आते ही नहीं इस तरफ, तो फिर वो फटे में है, जिद में है। अब यहूदों ने सारा तो जिद की वजह से ये कर रहे थे, उनको तो नहीं कबूल था ये रास्ता जो सहाबा कराम का था। फिर अगर वो नहीं सुनते, नहीं मानते, फटे में फंसा यकफी का होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके लिए अल्लाह काफी है, फिर आपके लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह ताला खुद ही निपट लेगा इनसे। आपको इनके साथ ना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, ना इनके आगे बिछने की जरूरत है, किसी तरह ये मान ही जाए। अगर वो नहीं मानते, आपके लिए अल्लाह काफी, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। ये कितना प्यारा कलमा है ना, फसा यकफी का हमुल्ला, इसको हाईलाइट कर लें हाईलाइटर से। जब भी कोई मुखालिफ हो और आपको लग रहा है कि अब मैं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, तो फसा यकफी का हमुल्ला, अगर आप हक पे हैं ना तो अल्लाह ताला आपके लिए काफी है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने उनके घर को जब बागियों ने घेर लिया था और उसके बाद वो कूद के अंदर भी आ गए, तो वो कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे, और इसी आयत पे थे जब उनको शहीद किया गया, और उनके उनका जो खून था वो इस जगह पर गिरा जहां पे ये लिखा हुआ है फसयकफी कहुमुल्ला। आज भी ये नुस्खा जिस पे उनका खून ड्रॉप हुआ था वो आज भी मौजूद है टर्की के म्यूजियम में, और इसमें मैसेज है, अल्लाह आपको बचाने वाला है ना, अल्लाह आपके लिए काफी होगा ना इनकी तरफ से, यानी इनकी जो शरंगेजी है, इनकी तरफ से का मतलब क्या है, इनके अगेंस्ट, इनके मुकाबले में अल्लाह आपको काफी है। अल्लाह ताला ने हक वालों का हक जाहिर कर दिया दुनिया में, फिर इंसान क्यों डरे? जिसको ये हो के मेरा अल्लाह है ना, मेरे लिए वो काफी है। فسيكفيكهم الله. مخالف چاہے بہت سارے لوگ ہیں، ہم میں ان کے لیے ہم کی ضمیر، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل میں بھی تو یہی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کیا غم ہے کہ ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، سب بھی مخالف ہو جائیں، کیونکہ دین کے راستے میں چلنے میں نا مخالفتیں آئیں گی، اور جتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ گزرے ہیں ان کو مخالفتیں سہنی پڑی ہیں، ان کو باتیں سننی پڑی ہیں، ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں، اور بہت زیادہ زیادہ کرنی پڑی ہیں، تو اس کی پرواہ نہ کیا کریں، جب آپ کو کوئی طعنہ دے دے، جب آپ سے کوئی بدتمیزی کر لے، کوئی بد اخلاقی کر لے، کوئی ڈسکرمنیشن کر لے، تو پرواہ نہ کیا کریں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یہ اینڈ کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء آتے ہیں، ایسے ہی نہیں آتے، یہ ان کے اندر میسج ہوتا ہے، پچھلی بات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے بات، ایسے ہی رینڈملی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی باتیں سنا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، کوئی کیا سازشیں کر رہا ہے کسی کے خلاف، اور آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اگر اللہ کے راستے میں چلنے میں آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ، اس سے بڑھ کے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ صبغہ، صبغہ کیا ہے؟ دین، اللہ کا دین. دیکھیں جو عیسائی تھے نا، وہ اپنے بچوں کو آج بھی بیپٹائز کرتے ہیں، انکی ایک رسم ہے کہ وہ بچے کو رنگ میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ صحیح کیتھلک ہو گیا، اب یہ صحیح دین پہ ہو گیا، بتا دیا گیا یہ رنگ میں رنگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا رنگ وہ اپنے اوپر چڑھاؤ، اس لیے کہ اس کے رنگ سے بہترین رنگ کوئی نہیں، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس کے دین کا رنگ. اور یہ میٹافوریکلی کہا گیا، یہ نہیں کہ کوئی رنگ ہے جس میں جا کے ہم نے خود وہ رنگ لینا ہے اور پھر نکلیں گے، یہ میٹافوریکلی کہا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو ایک رنگ اللہ کا بھی ہے، اس رنگ کو جو اپنا لیتا ہے، یہاں پہ صبغہ میں نے آپ کو کہا نا، صبغہ، صبغہ کہتے ہیں نیچرل کلر کو، نہیں کہتے ڈائی کو، کہتے کسی چیز کو رنگنا ایسے کہ اس کے اوپر وہ سارا رنگ چڑھ جائے اور ایسے چڑھے کہ اس کا حصہ بن جائے، یعنی کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن. آپ نے دیکھا ہوگا آپ دوپٹے وغیرہ رنگواتے ہیں، کوئی کپڑا رنگواتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے، وہ اس کو پورا ڈبو دیتا ہے رنگ کے اندر، اور جب نکالتا ہے تو پورا رنگ چڑھ گیا ہوتا ہے اور پچھلا رنگ مٹ چکا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ رنگ تھا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب کہاں سے لائیں ایسا پانی جس کے اندر ہم رنگیں؟ تو بات وہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی پانی کے اندر جانا ہے اپنے آپ کو رنگنے کے لیے، بات یہ ہے کہ جس طرح ہم بولتے ہیں نا، دیکھیں ہم عام زبان میں بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر تو ان لوگوں کا رنگ ہی چڑھ گیا، اور وہ تو اس کے اوپر بیسٹ کا رنگ چڑھ گیا، تو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا رنگ کیا ہے؟ یعنی ان کے جیسا ہو گیا وہ، بالکل ویسٹ کا رنگ کیا، یعنی بالکل ویسٹ کے مطابق ہو گیا، ساری اس کی چیزیں، اس کے کام، اس کے طور طریقے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب بالکل ان کی کاپی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا رنگ، یعنی اس کے دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، اس کا مطلب ہے کہ تم تو جب دین اسلام میں آتے ہو تمہیں تو بالکل ٹرانسفارم ہو جانا چاہیے، تمہارے اوپر رنگ چڑھ جانا چاہیے اللہ کے دین کا، تب ہوں تم ہو صحیح مسلم، تب ہے تمہارا ایمان معتبر. جیسے بدل دیا جاتا ہے کسی چیز کو رنگ دے کے وہ بدل جاتی ہے نا، اسی طرح انسان، کپڑا بدل گیا نا اس کا رنگ بالکل بدل گیا، اسی طرح انسان اسلام میں جب داخل ہو جاتا ہے، اسکے دل میں ایمان آ جاتا ہے، اور سچا ایمان آ گیا نا تو بالکل بدل جاتا ہے، وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا. اور آپ کپڑے کو اگر کہیں سے تھوڑا رنگ چڑھا، کہیں سے زیادہ چڑھا، کہیں سے ایسے چڑھا، کہیں कहीं डबोया ही नहीं पूरा गया, तो क्या होगा फिर? ऐसा मैसी होगा वो, इतना भद्दा लगेगा, किसी काबिल नहीं होगा वो। इसी तरह इंसान है, कहीं से तो अपने आप को इस्लाम से बचा लिया, कहीं डूब गए, कहीं ज्यादा रंग चढ़ा, कहीं कम रंग चढ़ा, बस ऐसे डब खड़बे से होके रह गए। कैसा वो इंसान, कैसा वो कपड़ा लगेगा जो इवनली रंग नहीं जिस पे चढ़ा। दीन में भी कहा गया उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि कहीं थोड़ा रंग है, कहीं ज्यादा रंग है, कहीं कुछ है ही नहीं रंग। मसलन पहनने ओढ़ने में, बोलने चालने में, इसमें तो हमने दूसरों का रंग चढ़ा लिया अपने ऊपर, और कमाई के अंदर हमने चलो इस्लाम का रंग चढ़ा लिया, फिर किसी और चीज में किसी और का रंग चढ़ा लिया। आज हम क्या इस तरह से नहीं हुए थे कि जैसे रंग बिरंगे से हो जाते? कहीं हिंदुओं का रंग चढ़ाया हुआ, कहीं ईसाइयों का रंग चढ़ाया हुआ, कहीं किसी और का रंग चढ़ाया हुआ, हर तरफ से डिफरेंट ही नजर आ रहे हैं। कितनी भद्दी वो चीज होगी जिसके ऊपर पता नहीं हर तरफ से उल्टे सीधे रंग चढ़े हो, वो कितनी भद्दी चीज लगेगी। कहीं हम आज ऐसे तो नहीं हो गए? कंप्लीट रंग चढ़ना चाहिए। ये नहीं कि शादी ब्याहों में हिंदुओं का रंग, पहनने ओढ़ने में ईसाइयों का रंग, बिल्कुल एक मिक्सचर बन के रह गए। अजीब ही हमारा शक्लो सूरत हो गई है, एक दीन का मलीदा बना के रख लिया सब कुछ, हर तरह के रंग उसके अंदर ऐड कर दिए। तो पूरा का पूरा अपने आप को रंगना है अल्लाह के रंग में, क्योंकि उससे खूबसूरत रंग किसी का हो ही नहीं सकता, वो सबसे खूबसूरत रंग है। लेकिन हमें वो रंग खूबसूरत लगे तो फिर है ना, हमें तो हर एक का रंग खूबसूरत लगता है सिवाय अल्लाह के रंग के, यानी उसके दीन के रंग के। तो जिंदगी में रंग चढ़ाना है, यानी हमारी बोल चाल, उठना बैठना, चाल ढाल, बातचीत मामलात, जिंदगी के हर फेज में, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो इंसानों के साथ मामला हो, अपनों के साथ हो, गैरों के साथ हो, सब में अल्लाह का रंग नजर आए, जैसे सहाबा ने चढ़ा लिया था, जैसे सहाबा ने चढ़ाया था। वो क्या थे और क्या बन गए जब उनके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा। और हम अगर रंग चढ़ाते ही हैं, कहीं से थोड़ा बहुत करते ही हैं, तो वो भी कच्चा रंग। कच्चा रंग कभी आपको पसंद आया? किसी को नहीं देखा जो जाके कहे रंगने वाले को कि कच्चा रंग चढ़ा दो। सब मेक श्योर करते हैं रंग तो पक्का है ना, उतरेगा तो नहीं ना, लेकिन हमारे रंग कितने कच्चे हैं। रमजान में हम रंग चढ़ाते हैं, रमजान गुजरता जाता है, कच्चा रंग जो होता है एक ही धुलाई के साथ उतरना शुरू हो जाता है। जरा दुनिया में निकले और रंग उतर उतर जा रहे हैं, क्योंकि कच्चा चढ़ा था, पक्का रंग सिबगत अल्लाह। और ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये रंग अल्लाह ताला ने पसंद किया है हमारे लिए, तो उससे खूबसूरत कौन सा रंग हो सकता है जो अल्लाह ताला जिसमें हमें देखना चाहे, जिस रंग में वो हमें रंगना चाहे। अब आप बताइए, आपको ये रंग पसंद है? वाकई पसंद है अल्लाह के दीन का रंग, तो फिर क्यों नहीं नजर आता शादी में? क्यों नहीं नजर आता? किसी की वफात हो जाए तो वहां क्यों नहीं नजर आता? किसी परेशानी के वक्त क्यों नहीं नजर आता? अपने मामलात और आदतों में क्यों नहीं नजर आता? नहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत गुजार हैं, हम उसी की सिर्फ बंदगी करने वाले हैं। पहले आया नहनु लहू मुस्लिमून, अब आया नहनु लहू आबिदून, ये डिक्लेरेशन है। अब आएगा नहनु लहू मुखलिसून, इस्लाम इबादत और इखलास। सिर्फ इस्लाम नहीं है, इबादत भी है। इबादत का मतलब होता है कि अपने आप को सबमिट करना, झुकाना, तजल्लुल, इंतहाई मोहब्बत के साथ। इबादत इताअत का नाम है, गुलामी का नाम है, शदीद मोहब्बत के जज्बे के साथ जो गुलामी की जाए, हर वो काम किया जाए जो अल्लाह ताला की मर्जी का है। इबादत के लिए शदीद मोहब्बत का होना जरूरी है, इस जज्बे के बगैर नहीं होती। बाज दफा हम इबादत करते भी हैं, यानी इताअत करते भी हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं होती दिल में, वो नहीं है इबादत। कुल अतुहाजुनना फिल्लाह, कह दीजिए इन यहूदो नसारा को, तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो। वह हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, जबकि वो तो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। हमारा रब कोई और तो नहीं है, वो ही रब है जिसको तुम भी रब मानते हो। वला ना मालूना वला कुमा मालूकुम, ये आखिर में जाके कहना है। ये शुरू दिन से नहीं कह देना हमारे लिए हमारा अमल, तुम्हारे लिए हम तुम्हारा अमल, नहीं। पहले किसी को तबलीग करनी है, बताना है, तो झगड़ा करते थे ना वो मुसलमानों से, तो तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, जब वो तो हमारा और तुम्हारा, ये तो झगड़े की यानी कोई बात ही नहीं है। हम तो एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं, एक ही खुदा को मानते हैं, जबकि तुम्हें तो जेब भी नहीं देता कि तुम हमारे से झगड़ा करो। क्योंकि ये तो वो लोग थे ना जिन्होंने रसूलों को माना ही नहीं, उनको कत्ल कर दिया, उनको सताया इतना ज्यादा, तुम हमसे झगड़ते हो। तो ठीक है, वनाहु लहु मुखलिसून, हम तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए सिंसियर हैं। ये आयात हक का रास्ता बता रही है। दुनिया में कोई कहे मैं हक पे हूं और तुम गलत हो, हक उससे नहीं लेना, अंबिया के रास्ते से लेना, जिसमें इखलास था, जिसमें इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए थी और जिसमें फरमाबरदारी। तो मुस्लिम, आबिद और मुखलस होना, यही अंबिया का तरीका था। खालिस वो होता है जिसमें कोई इंप्योरिटी ना हो, जो पाक हो इंप्योरिटी से, गंदगियों से, चाहे वो शिर्क की गंदगी है, चाहे वो दूसरे मजाहिब के तरीकों की गंदगी है, चाहे लोगों के रस्मों रिवाज की गंदगी है, चाहे वो बिदात की गंदगी है, उन सब से पाक होना, चाहे वो रियाकारी की गंदगी है। तो मिलावट से पाक चीज को खालिस कहते हैं ना। तो हम उसके लिए सिर्फ खालिस हैं, यानी ना कोई रियाकारी, ना कोई दूसरों के तरीके, ना कोई शिर्क, ना कोई बिदत। अम तकूलू ना इन्ना इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अस्बात क्या नू हूदन ऊ नसारा। तुम ये कहते हो कि ये सारे पैगंबर और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ये सब यहूदी थे, या ईसाई कहते हैं ये सब ईसाई थे। कुल अंतुम आलम हो मिल्ला, क्या तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह ताला को पता है? अब इसका जवाब वो ये तो नहीं दे सकते कि हमें ही ज्यादा पता है। तुम तो नहीं थे ना उस वक्त, तुम्हें तो नहीं पता कि वो क्या थे। हर कोई उनको अपना बना के समझता है। असल में क्या होता है कि सबको बताना कि वो भी ये थे, इससे वो जस्टिफाई करती हैं और इसको दलील देते हैं कि हम ठीक है, हम हक पे हैं, क्योंकि देखो ना वो भी यही मानते थे, फलां भी यही मानता था, फलां भी यही मानता था। तो तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह ताला को ज्यादा पता है? अगर मुसलमान भी ऐसा करना शुरू कर दे, तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह ताला को ज्यादा पता है? उसने तो सब कुछ कुरान में बता दिया। सहाबा भी, हनफी बरेलवी वो भी होते थे, वो भी देवबंद और शिया और सुन्नी ये सब होते थे। अल्लाह अकबर। तो उनकी इतने बड़े बड़े पैगंबर हैं, उनकी निस्बतें अपने साथ करके, और इसको ये सोचते हैं कि ये बस हमारा तो काम पूरा हो गया, क्योंकि अब हम ही हक पे हैं, क्योंकि देखो ये लोग भी तो यही थे। नहीं, तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह ताला को। वमन अदलम मिम्मन कतम शहादत इंदहू मिन अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो गवाही को छुपाए, जो इसके पास है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कौन सी गवाही थी जो इनके पास थी, जिसको ये छुपाते थे, वो कौन सी गवाही थी? अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास तौरात में और इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही मौजूद थी, उनका हाल हुलिया मौजूद था। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया, आगे आप जाके पढ़ेंगे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हो, फिर भी छुपाते थे, फिर भी नहीं जाहिर करते थे कि हमारी किताबों में तो ये लिखा हुआ है, हालांकि वो अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन बस छुपा लिया। अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है, तुम अल्लाह ताला को अनअवेयर ना समझना कि उसको पता ना चले कि तुम क्या अमल कर रहे हो। तो ये कितनी बड़ी गवाही थी जो उनकी किताबों में इवन ईसा अलैहि सलाम ने भी बनी इसराइल से फरमाया था कि मैं गवाही देता हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, और अहमद नाम भी बताया था, सूरह सफ में ये मौजूद है, तिलका उम्मतुन कद खलत, ये उम्मत थी जो गुजर चुकी, तो उनको लेके फखर का अपना ऊपर समझते हो कि हम उनके अंदर से हैं, तो ये उम्मत तो गुजर चुकी है, लहा मा कसबत वला कुम्मा कसब तुम, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाई की और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाई की। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे। तो यहाँ तक ये पारा भी मुकम्मल हुआ और बहुत सारे मैसेजेस हमें दे के गया ये पारा, बहुत सारी बातें हमारी इसलाह की हैं इसने। और सूरह बकरा तो है ही वो सूरत जो बताती है कि उम्मते मुस्लिमा को कैसा होना चाहिए और किस किरदार से उनको बचना चाहिए, कौन सी चीजें उन्होंने नहीं करनी। और आगे अगला पारा शुरू होगा तो उनके लिए एक गाइडलाइन दे दी गई कि उन्होंने अब करना है तो करना क्या है। इसके अंदर ये देखना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे उन चीजों से बचाएं जो कि हमें अभी तक बनी इसराइल के जो जराइम है बता के हमें वॉर्न किया गया, उन चीजों से हम अपने आप को कैसे बचाएं, और कौन से काम है जो हमने करने हैं, और मुस्लिम बन के रहना, आबिद बन के रहना, मुखलिस बन के रहना, ये नहीं है क्योंकि इस्लाम को बदल दो, खुद खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, जब इस्लाम पे चलना मुश्किल लगता है तो इस्लाम को ही बदलने की कोशिश शुरू कर देते हैं, नहीं हम तो मुस्लिम हैं, हम तो फरमा बरदार हैं, हम तो झुके हुए हैं, जैसा अल्लाह ताला फरमाएगा हम वैसे ही चलते होंगे। अल्लाह ताला जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितनी बातें हमने पिछली उम्मतों से सीखी हैं और जितनी बातों में वो फेल हुए हैं, अल्लाह ताला हमें इस फेलियर से महफूज रखे। और जिनकी तारीफें की गई हैं यहाँ पर हमने जो पढ़ा है, अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम को फॉलो करने की तौफीक दे। हम सिर्फ अपने बुजुर्गों और सिर्फ अपने बड़ों और सहाबा और उनके ऊपर फख्र करने वाले ना हों, बल्कि हम उनको फॉलो करने वाले बने। वो हमारे आबा थे मगर हम क्या हैं ये देखने की जरूरत है। वो बड़े फिगर्स थे, हिस्टोरिकल फिगर्स थे, वो हीरोज थे हमारे, हमने उनको फॉलो करना है। उनके हमारा हीरो होने से हमारी निजात नहीं हो जानी, ये उनके लिए फायदा मंद होगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
أم كنتم شهداء الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون